तो वो तो मुशरिक नहीं थे, वो कैसे थे फिर? शाकिर अल्ली अन उमी, शुक्र करने वाले उसकी नेमतों। क्या था उनके पास, क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बताएं? बादशाह थे क्या, हुक्मरान थे क्या, महलों में रहते थे क्या, आगे पीछे उनके नौकर थे क्या, बहुत बड़ी हुकूमत थी क्या उनकी? नहीं, क्या थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? होमलेस थे। वतन उससे तो निकाल ही दिया गया, घर बार कोई भी नहीं, कौम बरादरी जत्था नहीं, वो भी नहीं नजर आ रहा, मालो दौलत वो भी नहीं है, एक अरसे तक औलाद की नेमत वो भी नहीं नजर आई। क्या था जिसपे शुक्र अदा कर रहे थे? हम कहते हैं, आज रोते हैं, मेरे पास कौन सी कोई ऐसी चीज है, मैं किस पे शुक्र अदा करूं, मुझे क्या मिला है, ये कहते हैं ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्या था जिसपे शुक्र अदा करें? इससे पता चला कि शुक्र जो होता है ना, वो इस पे नहीं होता कि जब इंसान के पास बादशाहत ही होगी तो शुक्र करेगा, जब उसके पास कोई इतने लग्जरीज के अंबार होंगे तो वो शुक्र करेगा, ऐसा नहीं है। शुक्र गुजारी असल में वो एहसास है, वो दिल के अंदर होता है, दिल के एहसास का नाम है, और वो उस पे नहीं होता कि जब बहुत कुछ मिला है तो तब। वो जो शुक्र गुजार इंसान है, वो हर वक्त उस चीज को देखता है जो उसके पास है, उसको नहीं देखता जो उसके पास नहीं है। और ना शुक्रा इंसान हर वक्त उस पे रोता है जो उसके पास नहीं है, उसको वो नजर ही नहीं आता जो उसके पास है, कि मेरे पास कितना कुछ है वो नहीं नजर आता, मेरे पास क्या वो एक चीज नहीं है, उसके ऊपर हर वक्त रोना, हर वक्त रोना, ये ना शुक्री है, ये ना शुक्री है। या अल्लाह हमें ना शुक्री से महफूज रख, हमारी कहीं एक तरफ से कोई कमी हो जाए, एक तरफ से हमारे रस्सी खिंच जाए, एक हमारे से कोई नेमत छिन जाए, या एक चीज हमें नहीं मिली भी, हम हर वक्त उसको ही रोते रहते। जिसके पास औलाद नहीं, उसका यही काम खत्म नहीं होता, बस हर बात उसको ये न नजर आ रहा कि मुझे सेहत की नेमत है, अमन अमान है, मेरे घर में खाना पीना है, मेरे प्यारे हैं, मेरे पास और नेमते, उसको बस ये नहीं, हमारे पास औलाद नहीं, हाय औलाद नहीं, हाय, उसके ऊपर ही वो सोग बनाता रहता। किसी का एक कोई फौत हो जाता है तो वो उसी के ऊपर सारी जिंदगी डिप्रेशन के अंदर रहता, उसको ये नहीं नजर आता कि मुझे अल्लाह ने और कितनी नेमतें दी। किसी की जॉब चली जाए, वो उसी के ऊपर रोता रहेगा, उसको कोई नहीं नजर आएगा मेरे पास और क्या कर। तो इंसान की ये नाशुक्री है कि वो उन चीजों का हर वक्त दिल में एहसास रखे जो उसको एक आध चीज या दो चार चीजें नहीं मिली। और वो कितनी नेमतें मिली हुई हमें, क्या हमने पढ़ा था इसी सूरत में, पढ़ा सूरह इब्राहिम में भी पढ़ा था, क्या क्या मिला हुआ हमें, कितनी मिली हुई नेमतें बताइए। इन तउद्दू निअमत अल्लाही ला तुहसुहा, इतनी नेमतें तुम्हें अल्लाह ने दी हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते। इसको वाकई दिल से मानते कि गिन भी नहीं सकते हम? नहीं मानते, अगर मानते होते तो हमारा शुक्रगुजारी का रवैया होता, हमें तो लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए हमारी हाय हाय खत्म नहीं होती, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हाय हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हाय मुझे क्या मिला है, आगे से बल्कि उल्टा हम पूछते हैं, हाय मुझे क्या मिला। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है तुम गिनने लगो, तुम्हारे आज सुपर कंप्यूटर भी है ना, वो भी नहीं गिन सकते जितनी नियमते मैंने तुम्हें दी है। कंप्यूटर के कंप्यूटर भर लो, कंप्यूटरों में लिखने शुरू कर दो, काउंटिंग लगा दो, गिन ही नहीं सकते, ये रब का दावा है। इतनी नियमते हैं हमारे पास, लेकिन क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हम ना शुक्रे बहुत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बजाहिर देखने में कुछ भी नहीं था उनके पास, जिसको जो आज हम नेमत समझते हैं ना, उनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना अल्लाह ने उनको आजमाया, इतना आजमाया, हर तरफ से आजमाया, बीवी से, औलाद से, उनकी अपनी जान से, हालात से, कौम से, हर तरफ से आजमाया, लेकिन लेकिन हर दफा वो शुक्र गुजार ही रहे। अल्लाह अकबर, इश्तबाह हो, उसने चुन लिया उसको। अल्लाह ऐसे ही नहीं चुन लेता, फिर अल्लाह ताला ने चुन लिया इसलिए कि शुक्र गुजार थे, वो शुक्र की मिसाल थे, तो अल्लाह ने उनको चुन लिया। वह हदा हुई ना सिरात मुस्तकीम, फिर अल्लाह ने हिदायत दे दी सीधे रास्ते की। हम तो मांगते हैं हिदायत, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया, अल्लाह ने उनको चला दिया फिर सिराते मुस्तकीम पे, क्योंकि इंसान की अपनी तौफीक नहीं है कि वो सिराते मुस्तकीम पे चल सके। अल्लाह तब ने चला दिया उनको, उंगली पकड़ के चला दिया, फिर अल्लाह थाम लेता है, फिर अल्लाह चला देता है। जब इंसान शाकिर होता है, शाकिर ये नाम तो रख लिया जाता है, शाकिर शाकिरा, लेकिन कितने शुक्र गुजार हैं हम। बहसियत कौम भी ना शुक्रे, और बहसियत अफराद भी हम ना शुक्रे। देखें, अगर आप अपने जुबान की बातों को, वाकई ऐसा ही है। वआतैनाहु फिद्दुनिया हसना, हमने इसको इस दुनिया में भी हसना दी, इस दुनिया में भी हमने उसको भलाई दी। और दुनिया की भलाई क्या थी? अल्लाह ताला ने उनको नबुवत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको फिर औलाद भी दे दी, फिर उनको पोते की नेमत को भी बता दिया, उनकी औलाद को भी अल्लाह ने नबी बनाया। इस्माइल अलैहि सलाम और इसहाक अलैहि सलाम नबी हुए, उनकी आगे औलाद के अंदर आखिरी नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील बना दिया, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में रख दिया, रहती दुनिया तक उनका जिक्र और उनकी तारीफें चलती रहेंगी। हर मजहब वाले उनका इकराम करते, उनकी इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी है, ईसाई है, यहूदी है, मुशरिक है, सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, मानते हैं, उनकी अच्छी तारीफ करते हैं। उनका नाम देखे, दुरूद शरीफ के अंदर भी हम उनका नाम लेते हैं, कमा सल्लै ताला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद, कमा बारक ताला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। तो देखें, इब्राहिम अलैहि सलाम का अच्छा जिक्र अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक रख दिया। तो हालांकि उनके साथ कोई बहुत लंबी चौड़ी फॉलोइंग नहीं थी, देखिए लंबी चौड़ी, हम बहुत फॉलोइंग को देखते हैं ना, कि कितने इसके पीछे चलने वाले हैं, इसके स्टूडेंट कितने हैं, इसके फॉलोअर कितने हैं, इसके फैन कितने हैं। कोई उनके फैन नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे उनका नाम जिंदा रखा, काबा की तामीर उनके हाथों से कराई। सुभान अल्लाह, उनकी फैमिली से जमजम का कुआं, जमजम आज भी चल रहा है, आज भी लोग पानी पी रहे हैं वहां से, आज भी लोग उस काबा का तवाफ कर रहे हैं, जिसकी बुनियादों पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोशिश और काविश और मेहनत थी। उनकी औलाद के अंदर फिर सारे नबी आए, जितने नबी उनके बाद आए वो सारे उनकी औलाद में से ही आए, उनकी औलाद से बाहर नहीं आए। कितना बड़ा इकराम। तो अल्लाह ताला जो है ना कदरदान है, इससे पता चलता है। हम इतने थोड़े दिल है ना, हमें लगता है कि आज हम नेकी करेंगे ना कोई, बस फौरी तौर पर या तो मिल जाए, अच्छा आखरत में इसका सवाब मिलेगा, चलो जी आखरत किसने देखी है, हमें तो आज चाहिए। हम उस लालच में कहते हैं इसको छोड़ो, हम कुछ और काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला देखिए, यहाँ से पता चलता है कि इतना कदरदान है ना, आप अल्लाह के रास्ते में लग के तो देखिए, वो दुनिया की भी भलाई देगा। और पहले दुनिया की मेंशन की गई है, इधर बना आती ना फिर दुनिया हसना, हम जब मांगते भी हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में ये दुआ सिखाई है हमें कि पहले दुनिया की हसना मांगो, दुनिया की भलाई मांगो, दुनिया की भलाई में नेकी की तौफीक भी आ जाती है, चैन सुकून अमन सब कुछ आ जाता है दुनिया की हसना में। तो दुनिया की हसना अल्लाह ने उनको अता फरमाई, ऐसे नहीं कहा कि बस आखरत में, आखरत में तो पता ही है, आखरत में तो जो उनके मकामात होंगे, कौन इससे ना वाकिफ है, हर एक को पता है कि आखरत में उनके कितने बड़े मकाम होंगे, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने दिया ना। तो फिर क्यों हम ये सोचते रहते हैं, और क्यों हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिला? उनको भी एक इंतजार के बाद मिला था, पर मायूस नहीं हुए, कहीं मायूसी नहीं नजर आती कि अल्लाह आज तक तो औलाद मिली नहीं है, तो मुझे तो मिलनी ही नहीं है। तो दुनिया की भी हसना और आखरत में वो भी ना सालेहीन सालेहीन के साथ होंगे। सालेहीन कौन? अंबिया, शुहादा, सिद्दीकीन के ग्रोह, सालेहीन के ग्रोह के साथ होंगे। और हर नबी ने इस चीज की ख्वाहिश की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए मांगा वाले हकनी बिस्सालेहीन, अल्लाह मुझे सालेहीन का साथ अता फरमाना। ये साथ दुनिया में भी मांगना चाहिए और आखरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मांगा, हुस्नून दुआओं में देख ले। तो ये जो साथ है ना, अगर दुनिया में मिल जाए तो दुनिया भी इंसान के लिए जन्नत बन सकती है कि सालेहीन का साथ यहाँ पे अता हो जाए। क्योंकि देखिए दुनिया में कई फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं, कई दुनिया में फंसे हुए अल्लाह से दूर लोग होते हैं। अगर वैसी कंपनी मिल जाएगी तो इंसान वैसा ही हो जाता है। सालेहीन का साथ होगा तो वो आपको बार बार अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ लेकर आएंगे, आपको याद दहानियां कराएंगे, आपको आपके मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन करेंगे, हक बात कहेंगे। सालेहीन का साथ बड़ा ही प्यारा होता है। सालेहीन के साथ इतना प्यारा है कि देखिए वो इंसान को उनका साथ मिल जाए तो इंसान दुनिया से चला भी जाए तो सालेहीन होंगे उसके साथी, तो उसके लिए दुआएं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना प्यारा साथ है। तो साले लोगों के साथ की दुआ का मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने पसंदीदा जो बंदे हैं ना, जो तेरे नेक बंदे हैं, उनका साथ अता फरमा। और ये ऐसे लोग हैं जिनका आखरत में भी साथ मिल जाना, यानी जन्नत के अंदर होंगे। सालेहीन तो जन्नत में ही होंगे, उनका उनके साथ वहां पे भी शामिल करना, दुनिया में भी लेना। ठीक है, तो अल्लाह ताला नवाजता है। यहाँ से पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की को जो चीजें अता हुई उनसे पता चला कि कभी भी इंसान इस बात से नाउम्मीद ना हो कि मुझे कुछ नहीं मिलना, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना, मुझे कुछ नहीं होना, नेकी कर तो क्या फायदा हुआ इसका। नहीं, अल्लाह दुनिया में भी फायदा देता है, दुनिया में भी समरात दिखाता है उसकी, वो जाया नहीं जाती अगर आपने अल्लाह के लिए की है, और आखरत में भी अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाता है। ठीक है, क्योंकि शैतान जब ये कहता है ना, क्या फायदा हुआ तुझे, तुझे क्या मिला ऐसी नेकी करके, क्या फायदा, तुम छोड़ो नेकी उनको, तो छोड़ो अब तो हम बाज आए ऐसा करने से, तो ये शैतान दिल में डालता है। तो हमें बस ये कुरान ही हमें याद दहानियां कराता है ना कि कोई नहीं, जो नेकी करोगे अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा उसका अजर। और नहीं तो इंसान की औलाद की रास्ते में, औलाद की सूरत में उसको मिल जाता है। देखा नहीं आपने सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो जो माँ बाप साले थे नेक थे तो अल्लाह ताला ने उनकी औलाद के साथ भलाई फरमाई है, उनकी औलाद के साथ भलाई फरमाई ना। तो वालिद का नेक होना, या आपको वालदा नेक होना, वहां पर तो वालिद का जिक्र है, लेकिन अगर आप वालदेन नेक है ना तो आगे औलाद में भी अल्लाह नेकी की वो कोई सूरतें दिखाएगा। हनीफा, फिर वही कि हमने आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की पैरवी करें, किस रास्ते की, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की। इब्राहिम वो जो यकसू थे, सब शिर्क के उन सब चीजों को छोड़ के वो तौहीद पे जमे हुए थे, उनकी पैरवी करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता, और कैसा रास्ता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो थे कि जब उनकी कौम ने उनको रिजेक्ट किया तो उन्होंने उनके साथ कोई बेसब्री नहीं की, उन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने उनके साथ दलील से बात की। इवन नमरूद के साथ जो मुबाहसा किया, मुजादला किया, सूरह बकरा में आता है, दलाइल के साथ किया, जबरदस्त किया, तहम्मुल के साथ किया, बड़ा सबर के साथ किया, और अपनी कौम की भी तबलीग करते ही रहे, एंड तक करते रहे, अपने बाप को तबलीग करते रहे एंड तक, हालांकि बाप का रवैया क्या था, अपने प्यारों को भी की, बाहर वालों को भी की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नमूना है। तो बताया गया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये वही की कि वो पैरवी करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की, जो हनीफ थे। हनीफ ये लफ्ज जब आ गया ना, तो हमें सबको ये समझ आना चाहिए कि इस रास्ते के ऊपर यकसू होके चलना है, फोकस्ड फोकस्ड, ये नहीं कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं फिर उधर चले गए फिर इधर आ गए फिर उधर, नहीं फोकस्ड होके करें ना, फोकस्ड होके चले। मैं कहा ना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। देखिए बार बार एक ही बात है कि वो शिर्क का जरा जरा बराबर नामो निशान उनके अंदर नहीं था, तौहीद पे जमे हुए थे, उनके अखलाक की, उनकी तौहीद की, उनके अकीदे की, और उनके किरदार की, और उनकी इताअत में, इस सब के अंदर हमारे लिए एग्जाम्पल है। इसलिए हमारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही की गई कि उनके रास्ते को आप फॉलो करें। इन्नमा जुअला सबतु अला लदीन अख्तलफू फी, बेशक हमने बना दिया, फर्ज कर दिया हफ्ते का दिन उन लोगों पर जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी इसकी। तो आपको पता है कि यहूदियों के लिए सब्त का दिन बनाया गया था, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, कैसे इख्तलाफ किया, उनको भी पहले जुमे का दिन इबादत के लिए दिया था। हर देखिए उम्मत को कोई ना कोई दिन दिया गया कि आपने उस दिन इबादत करनी है, इबादत के लिए मुकर्रर किया गया। तो ऐसा नहीं था कि उनको हफ्ते का दिन दिया गया, उनको भी जुमे का दिन दिया गया था इबादत के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है ना उसमें इबादत करेंगे, और वो तो सब्त का दिन बनता है, तो हमने तो उस दिन करनी है। तो इन्होंने खुद अपने लिए सब्त का दिन चूज किया था, फिर ईसाइयों ने अपने लिए संडे का दिन चूज कर लिया, तो इनको भी जुमे का दिन, असल में तो जुमे का दिन दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इला सब्त से मुराद है कि सब्त की सजा को इनको भुगतना पड़ा, ये फिर उन्होंने उसकी भी पाबंदी नहीं की, खुद ही ये दिन मुकरर किया, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस दिन सिर्फ इबादत करनी, इन्होंने मछलियां पकड़ने शुरू कर दी, इनको मना किया था, इन्होंने बात नहीं मानी, तो इन्होंने खुद इख्तलाफ किया इस दिन में। और फिर वह इन्ना रब्बा का लयाहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, इन्होंने जो इख्तलाफ किया, और हर किस्म का इख्तलाफ है, आपका रब फैसले करेगा कयामत के दिन उन सब चीजों में जिसमें लोग इख्तलाफ करते हैं, चाहे वो ये जो मैं हफ्ते का दिन जिसने ले लिया, या और अपने दीन के बारे में, इसके अहकामात के बारे में जितने इख्तलाफात हैं। देखिए दुनिया में सब इख्तलाफात का फैसला नहीं हो सकता, सब नहीं सुलझ सकते, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, हर उम्मत हर ग्रोह अपने अपना जो उसके पास है ना उसी को सही समझता है, वो कहता है बस इस ये ही सही है और यही बात हक है और यही बात सही निकलेगी कयामत के दिन। लेकिन अल्लाह ताला ही है जो फैसला करेगा उस दिन जिसमें भी लोग इख्तलाफ करते हैं। आज कितनी बहसें होती हैं, आप खुद से बताएं, इतनी बहसें होती हैं बहुत तरह के मामलात में, सिर्फ दीन अदियान में नहीं, बहुत तरह के मामलात में कोई किसी ने कोई चीज हक बनाई भी है, कोई दूसरा जस्टिफिकेशन देके किसी और चीज को हक कह रहा है, किसी के पास कोई दलील है, किसी के पास कोई दलील है, इन सब चीजों का फैसला कैसा होगा? दीन का भी और बाकी भी जितने इख्तलाफात हैं उन सब का फैसला, आज देखें कितने फिरके फिरके बन गए, फिरकों में इख्तलाफ है, हर कोई दूसरे को काफिर कहे हुए, तो काफिर है कौन फिर? देखिए यहाँ पे हम अपने तौर पे तो कह सकते हैं, लेकिन उनको कौन मनवा सकता है, वो अपने दलाइल लेकर आ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है फिर कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इन सारे झगड़ों का फैसला फरमाएगा जिसमें लोग इख्तलाफ करते थे। उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती वल मौइज़ती, अब वो बात कही गई कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, कैसे, अब उसको बताया गया कि इख्तलाफात में नहीं पड़ना, इख्तलाफात के पीछे नहीं जाना, उसके ऊपर बैठ के और फिर बस इसी को एक पॉइंट बना के और फिर दुश्मनियां, और फिर बाज दफा होता ऐसे है कि इंसान अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना तो चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं होती और वो उल्टा नुकसान कर देता है। तो यहाँ पे हमें समझाया गया कि किस तरह से आपने अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या आप टूल्स या क्या सिफात है जो आपके अंदर होनी चाहिए, दावत के असूल बता दिए गए। उदाऊ मतलब दावत दो मतलब बुलाओ, किस तरफ, इला सबीली रब्बी का, अपने रब के रास्ते की तरफ। वैसे तो हर काम के अंदर ही बड़े इंसान को हिकमत के साथ चलना चाहिए, लेकिन खास तौर पे जब आप दावत का काम कर रहे हैं तो एक तो अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना, लेकिन हर कोई इंसान किसी रास्ते की तरफ बुला रहा होता है, ठीक है ना। कोई अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है, कोई गैर अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता है लोगों को। हम उम्मत मुस्लिमा का फरीजा क्या है, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, ठीक है। और इसके लिए पहले खुद उस रास्ते पे कायम रहना जरूरी है। खुद पहले आप सीधे रास्ते पे होंगे तो दूसरों को भी उस रास्ते की तरफ बुलाएंगे। अब देखिए आजकल जो हो रहा है ना, कि कोई किसी रास्ते की तरफ बुला रहा है, कोई किसी रास्ते की तरफ बुला रहा है, क्या है ये, डिफरेंट तरीकों की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। या तो कोई इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होता है, या किसी और रास्ते की तरफ बुलाने वाला होता है। उम्मती होने में हमारे ऊपर ये फरीजा है कि हम अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने को अपना अपने ऊपर समझें कि हमारे लिए हमारा ये काम है, ये भी हमारी एक जॉब है। हम अल्लाह के रास्ते के पे बुलाने के लिए चुने गए हैं, इस उम्मत को चुना गया है कि वो दावत दे, लोगों को बुलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया उसके लिए आप क्या करो, हिकमत के साथ बुलाओ। हिकमत के साथ अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ हिकमत क्या होती है, एक तो हिकमत है कोई कुरान सुन्नत, ये हिकमत है, कुरान हदीस हिकमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान के जरिए लोगों को बुलाया अल्लाह के रास्ते की तरफ। तो बजाय बहुत लंबे चौड़े लेक्चर वैसे देने के, कोई कुरान की बात बताएं, हदीस की बात बताएं, तो ये हिकमत है। दूसरे हिकमत क्या होती है, सही टाइम पे सही फैसला करना, ये भी हिकमत होती है। कि यानी आप सही टाइमिंग देख के बात करें, ऐसे नहीं कि वक्त बेवक्त। अभी दूसरा इसके लिए तैयार नहीं है, वो मिसन उसको भूख लगे, वो खाना खाने लगा, आपने साथ अपना लेक्चर शुरू किया, बस ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। भाई आप वक्त देखिए, कौन सा मुनासिब वक्त है, किस तरह से मुनासिब बात की जाए, किस तरह से ऐसी बात की जाए कि जो बड़ी हिकमत वाली हो, विजडम के साथ, समझ के साथ। बस लोग समझदारी का मुजाहिदा नहीं करते, उनको शौक होता है कि वो बड़ा दावा का काम करें, घर में ही सारी समझदारी खत्म हो जाती वहां पे, बजाय किसी दलील के साथ और मौका देख के दूसरे के समझ का लेवल भी देखना है। हिकमत में ये भी आता है, समझ के मुताबिक। अब बच्चे से बात कर रहे हो, उसको कहाँ कहाँ से बातें बता रहे हो, उसको क्या समझ है उसकी। या एक ऐसा इंसान है कुरान ही नहीं कभी पढ़ा हुआ, जिसको कोई पता ही नहीं है, उसको इतनी ऊंची ऊंची बातें बताना शुरू कर दे, उसके लेवल की बात बताए। फिर ना इसके अंदर जज्बात में आने की जरूरत है, ना गुस्से में आने की जरूरत है, ना इसमें ताने देने की जरूरत है। हिकमत 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 ही तो नहीं आती हमें, अल्लाह ताला से हिकमत मांगनी चाहिए। युतिल हिकमत मैय शाह, वो जिसको चाहे हिकमत अता फरमा, मैं उतल हिकमत है फकत उतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत बड़ी खैर मिल गई। तो हिकमत अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझे हिकमत दे अपने काम के लिए, हिकमत दे। ये बड़ी अल्लाह ताला की नवाजिश होती है। इल्म तो हम ले लेते, हिकमत नहीं आती। इल्म तो आप पढ़ लिया, आपको पता चल गया, हिकमत कैसे आए कि समझदारी। तो ये जो हिकमत है ना, इसके साथ हमने काम करना है। आज बहुत सारी जगहों पर जब हम हिकमत का मुजाहिरा नहीं करते तो उल्टा दूसरे लोग चिढ़ जाते हैं, उल्टा वो हमसे भागने लगते हैं, उल्टा वो कहते हैं मैंने हमें ना सुनाओ, हम उनसे कुछ ऐसी बातें कहलवा लेते हैं कि उल्टा गुनाहगार कर देते हैं उनको, क्योंकि तो हमने हिकमत नहीं इस्तेमाल की ना। वल मुआइजातिल हसना, और मुआइजा हसना वाज, ऐसा जो वाज कहते हैं नरम बात को, उम्दा वाज, उम्दा नसीहत, नरम बात करें। देखिए बात करने में ऐसे उछल उछल के बातें ना करें, ऐसी ऐसी बातें ना करें कि जो है ना दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये जी हमारी दावत का हो रही, ये मुझे गुस्सा आ गया। भाई गुस्से से नहीं ये काम होते, ये तो नरम बात, नरम नसीहत के साथ होते हैं। अब ऐसी उसको बात की कि उसकी अनाई जगा दी, उसको ऐसे ताने दिए, तो उसकी बजाय इसके कि वो सीधे रास्ते पर आता, उसकी अना जाग गई, वो और ज्यादा वो हो गया कि मैं तो अब इस रास्ते पे आना ही नहीं। तो ये उम्दा बात जो खैर ख्वाही के साथ की जाए, दर्दमंदी के साथ की जाए। क्यों आजकल लोग जो है ना दीन वालों से भागते हैं, क्यों अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना हिकमत है ना मौजतुल हसना है। ना नरम बात करनी है, बात भी ऐसे करनी है जैसे मैं कोई ऑर्डर दे रही हूं। ऑर्डर देने से थोड़ी होता है। किसी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात किसी ने लिखी थी कहीं, उन्होंने कहा अगर आपने किसी को क्या चीज समझानी है कि ये करो, तो मसलन उन्होंने कहा कि आपने बताना है कि दांत साफ करो, अपने टूथब्रश करो, मुंह हाथ धो। तो वो उन्होंने कहा आप ऐसे ना कहें टूथब्रश करो, आप कहें अगर आप टूथब्रश कर लें तो आपके दांत कितने खूबसूरत लगे, कितने प्यारे चमके, अगर आप मुंह हाथ धो लें तो आपका चेहरा कितना रोशन नजर आएगा। मैंने कहा तो देखो कितनी हिकमत की बात इसने लिखी। इसी तरह बाकी चीजों में भी उन्होंने लिखा हुआ था, अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए, लेकिन उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ था कि आप इस तरह से करके बात करें कि अगर आप ये कर लें तो कितना अच्छा हो, कितने प्यारे लगे आप। और वाकई आप अगर देखें ना तो इतनी हिकमत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के अंदर, इतनी हिकमत है कि उनसे भी आप सीखते हैं। और देखिए कैसे कैसे लोगों ने तो नूह अलैहि सलाम को कैसी कैसी बातें की, कैसे कैसे उनको आपने सूरह आराफ में पढ़ ही लिया है कि कैसे नूह अलैहि सलाम को कहते थे कि आप तो वो हैं दलाल मुबीन पे हैं, आप तो कुली गुमराही पे हैं। किसी नबी को कह रहे हैं कि आप तो सफी सफाहतन में हैं, इन्ना लना कफी सफाहतिन व इन्ना लना दुनु का मिनल कादिबीन, आप तो झूठे हैं, आप तो बेवकूफी में मुबतला है। कौमे आद ने कहा था ना हुद अलैहि सलाम को, अब उसके ऊपर तो गुस्सा आ जाना चाहिए कि तुम मुझे झूठे कह रहे हो, तुम्हें क्या मिजाल है, तुम कौन से सच्चे हो। अब हम तो ऐसा जवाब दे, अब शुएब अलैहि सलाम को कह रहे हैं तुम्हारी नमाजें तुम्हें यही सिखाती हैं कि तुम अपने बाप दादा के दीन को ही छोड़ दो, ये सिखाया तुम्हारी नमाज ने तुम्हें। आज भी कई लोग ऐसे कह देते हैं तुम्हारा दीन बड़ा तुम्हें यही सिखाता है, तुम इस तरह से बात कर रही। अब उसके ऊपर और इंसान गुस्से में आ जाता है, और इंसान को होता है तैश आता है कि मुझे ये कह दिया। खुद तो नहीं आगे से ये कहते थे कि ये मुझे ताने मार रहे हैं मेरी नमाजों का, मुझे मेरे मिसाल के तौर पे मेरे कुरान पढ़ने में ताने मार रहे हैं, मैंने नहीं आज से पढ़ना कुरान, हम तो यही करने लगते हैं। अब तुम ना दखल दो हमारे मामला में, हमें खुद पता है कि हमने अपनी तिजारत कैसी करनी है, ये शुएब अलैहिस्सलाम को कहते थे। तो वो कैसे उनके तहमुल वाले जवाब हैं, कैसे उनके हिकमत वाले जवाब हैं। फिरौन ने कितनी बदतमीजी की मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, तुम तो हमारे टुकड़ों पे पले हो, एक तरह से ये फ्रेज है कि ये जो उसने कहा कि हमारा एहसान तुम मानो, एक तरह से ये बात उसने कही थी। अब उसके ऊपर कितनी इस चीज की बात है कि इंसान गुस्से में आ जाए उस वक्त। तो और फिर ये ताना दे दिया तुमने तो हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। अब वो नहीं कह रहे हैं तुम तो इस काबिल ही हो, तुम लोगों को तो ये होना चाहिए था, वो कौन सा सही था। उन्होंने कहा मैंने ये काम उस वक्त किया था जब मुझे नहीं पता था, मैं नावाकिफ था उस वक्त। देखिए ना मतलब उनके जवाबात भी कैसे थे। और उन्होंने जब उसने एहसान जिताया तो मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं ये तो वो नेमत है जिसका तू मुझ पे एहसान रखता है कि तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, तुम मुझ पे ये एहसान कर रहे हो जबकि वो तो देखो। फिर और भी तरह से फिरौन ने किस किस तरह से बातें सुनाई, इस तरह और भी अंबिया की हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ खुद कितना लोग करते थे, अबू जहल कैसी बातें करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कभी कोई बद्दू कुछ कर रहा है, कभी गले के अंदर चादर डाल के खींच रहा है, कभी कोई किसी तरह से कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना तहम्मुल था। फिर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना एहतियात करते थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के बाज अय्याम में ही सिर्फ वाज फरमाते थे, किस लिए कि अगर हर वक्त जहां बैठेंगे उनको लेक्चर शुरू कर देंगे, तो फरमाते हैं कि इसलिए कि हम उकता ना जाएं। और दूसरों को भी आप यही हिदायत करते थे कि हर वक्त ना लोगों के पीछे पड़ा रहा करके, जिधर देखा उसको लेक्चर शुरू कर दी, अब जिधर आप जाए उधर लेक्चर शुरू कर दीजिए। आप बन के आप लोगों तो आपको बुलाना ही बंद कर देंगे, कहेंगे कि आप मुसीबत इनके पास हो बैठो तो ये अपने लेक्चर शुरू कर देती है। ठीक है जितना भी आपके पास इल्म हो, इसलिए कोई आपको कहे कि आप कोई बात कहें, आप कोई बात बताएं, तो आप बता दें, या बातों बातों में कोई बात आप कर दें, लेकिन हर वक्त ऐसे ना बैठ जाएंगे, क्लास लगा के हर जगह बैठी हुई, चलो बैठो मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगी, चलो इधर बैठो मैं तुम्हें, इस तरह से तो नहीं कर सकते। कहते कि वाज भी, इसीलिए ये बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हर वक्त या हर रोज नहीं, हर रोज आप एक वाज कर रहे हैं, हर रोज आप एक वाज कर रहे हैं, क्या होगा, लोग बेअसरे हो जाएंगे, असर नहीं लेंगे, फिर उकता जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को लोग कहते थे आप रोज हमें वाज किया करें, फरमाया नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया, क्या हफ्ते के बाज दिनों में करते थे, लोगों के ऊपर फिर बोझ लगने लगेगा, सुनेंगे ही नहीं वो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे हजरत अनस से कि लोगों पे आसानी करना, मुश्किल ना करना, उनको खुशखबरी सुनाना, सॉरी हजरत अनस को नहीं ये फरमाया था, हजरत मास को फरमाया था, हजरत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया था हजरत मास से, अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाना, मायूस ना करना लोगों को, मुतनफिर ना कर देना, ऐसी सी बातें करना कि जो अंबिया के बराबर की बातें, आप लोग ये नहीं करते, आप वो लोग उस काबिल ही नहीं है, उतने हैं ही नहीं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो उस तरह के काम करें, आसानी करो लोगों के लिए, मुश्किलात ना पैदा करो, फिर इस तरह से आसान आसान बातें लोगों को बताएं, जब वो उसके आदी हो जाएं फिर उससे ऊपर की बताएं, फिर उससे ऊपर की बताएं, ऐसे नहीं कि मुश्किल तरीन बातें पहले दिन ही लेके शुरू कर दें, लोग कहेंगे नहीं ये हमसे तो होता ही नहीं। फिर इस तरह मौइज़तुल हसना में ये भी आता है कि दिल को नरम करें पहले, आप दिल को नरम करते नहीं है, वक्त बे वक्त नसीहतें करते रहते हैं हम, मैं अपनी भी मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं कह रही कि आप करते होंगे ऐसे, आप यकीनन अच्छा ही करते होंगे, लेकिन हम देखें वक्त बे वक्त, क्योंकि बाज दफा बच्चों के साथ है, हम खुद इतने आजिज आ जाते हैं कि ये क्यों नहीं सुन रहे, तो अब हम जूं उनका मुंह देखते हैं ये किया, फौरन हमें याद आता नमाज पढ़ी है तुमने, कुरान पढ़ा था तुमने, ये किया था तुमने, वो किया था तुमने, फौरन हमें ये शुरू कर दे, उसकी वजह से फिर वो हमसे दूर भागते हैं। फिर दूसरे की मजबूरियों का भी एहसास करना चाहिए कि किसके कौन सी मजबूरी है किसी की, उसके ऊपर उसको ताने ना दें कि हाँ तुमने करना तो है नहीं, तुम तो वैसे ही सुस्त हो, अब वो दूसरा अपनी कोई मजबूरी किसी बात पे बता रहा है, फराइज में नहीं बात, फराइज में कोई मजबूरी नहीं कि मैं उस हो गए नोटिस देके मैं मजबूर थी, ये नहीं, लेकिन और कामों में किसी में मजबूरी हो सकती है, किसी की कोई लेट आया है, कोई किसी तरह कोई और मजबूरी हो गई, अब उसके ऊपर उसको ताने ना दें, उसके हालात को मालूम करें, इसकी मजबूरी क्या है, इसी तरह ऐसी कोई बात ना करें जिसमें उनको जलील करें, बस मुबल्लिग ना ऐसा हर वक्त काम पकड़ लेते हैं कि वो लोगों को जलील करते रहते हैं, ऐसे फलाने ने ऐसे कर दिया, फलाने ऐसे कर दिया, मुझे किसी ने बताया कि फलां जो है ना वो बच्चों को बहुत, बच्चों के ऊपर ना बहुत ज्यादा जो करते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसे बदतमीज हैं, उनको ये नहीं सिखाया भाई, ये नहीं, कि बच्चे भी किसी बच्चे ने सुन लिया तो उन्होंने कहा हमने नहीं इनका सुलह करना, क्योंकि ये तो हर वक्त बच्चों की बुराइयां करती रहती, इसी तरह हर वक्त ये यूथ की बुराइयां, हर वक्त यूथ की बुराइयां, अब जब उनको ऐसे करते रहेंगे यूथ कहाँ आपकी बात सुनेंगे, ये तो ऐसे होते हैं, ये तो आजकल के ऐसे बच्चे हैं, ये तो आजकल के ऐसे बच्चे, उनको कभी सुनेंगे ही नहीं, कई आ जाते हैं वो हर वक्त उनका काम यही है, ये आज की बहुएं ऐसी हैं, आज की बहुएं वैसी हैं, आज की बहुएं ये करती हैं वो करती हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, ये माँ नहीं समझती अपनी सास को, ये ऐसे नहीं, अब वो जो बहुएं, जो यंग वो क्राउड है आपका, वो तो वैसे ही कहेगा कि छोड़ो इनको, ये हिकमत नहीं होती, तो अपने उसके अंदर हर वक्त किसी को जलील करते रहना, किसी को बुरा भला कहते रहना, हर वक्त अपनी हम कोताहियां देखते नहीं, वो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा इतना ये कॉमन है, ये बच्चों को देख लो फोन लिए बैठे थे बच्चों को देख, लेकिन हम देखे ना अगर वाकई में हम सबसे पहले तो खुद ही कर रहे हैं, बच्चों ने तो हमें ही देखा है ना, हम खुद ये करते हैं, हालांकि हमें तो फोन इस उम्र में आके मिले, उनको तो जब से पैदा हुए उन्होंने फोन देखे, वो तो फोनों में ही पले हैं बड़े हैं, लेकिन हर वक्त हम ये करते रहेंगे, वो क्या हमारे पास आएंगे, क्या सुनेंगे। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई आके गलत भी कोई करता था ना, तो ये पिन पॉइंट नहीं करते थे, फलां बंदे ने ऐसा किया, फलां तूने ऐसा किया, हमारे तो लोगों के सामने ही दूसरों को पिन पॉइंट कर देते हैं, तुम ऐसे करती हो, आपने ये किया, फलां बंदी ऐसे करती है, फलां को तो मैंने वहां पे देखा था, वो तो इस हुलिये के अंदर थी, वो तो ऐसे थी। नहीं, आपसे सरम ने कभी नहीं ऐसे किया था। अगर कोई ऐसी बात करनी होती थी ना, तो फरमाते थे लोगों को क्या हो गया, वो ये काम करते हैं, लोगों को क्या हो गया वो ये काम करते हैं, ये नहीं कि फलां ये उसने काम किया है। अब इसमें जिसने किया होता था वो सुन लेता था, उसको तो पता चल जाता था। इस तरह आप में से जो ग्रुप इंचार्जेस, आपने ग्रुप्स में इस तरह से करके किसी को शर्मिंदा ना करेंगे, उसको मुखातिब करके उसको कह रही हैं तुम ऐसी तुम ऐसी तुम ऐसी, आप तो कभी वक्त पे नहीं आती हैं, आप तो कभी ऐसे नहीं। बल्कि ये कहे हमें वक्त पे आना चाहिए, हमें वक्त पे अपना काम करना चाहिए। तो अगर आप उसको शर्मिंदा करेंगे ना, तो वो ढीठ हो जाएगा और वो भाग जाएगा, नहीं आना चाहेगा आपकी तरफ। बस लोग कुरान का ताना देते हैं लोगों को, उससे क्या वो कुरान की तरफ बुला रहे हैं, तुम तो बड़ा कुरान पढ़ती हो, तुम तो ऐसे करती हो, तुम कुरान पढ़ के ये करती हो। अब वो कहता ही है कि अच्छा मैं तो कुरान ही छोड़ देती, छोड़े ऐसे कुरान को, मैंने क्या पढ़ना, इस चीज की वजह से मुझे ताने मिल रहा है। अब वो नया नया बेचारा कुरान की तरफ आया, कि कुरान पढ़ के उसने परफेक्ट तो नहीं हो जाना था, फरिश्ता तो नहीं बन जाना था, क्यों उसे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे ताने कभी ना दे। तो वो दावत का जो काम होता है ना, अल्लाह की तरफ बुलाना होता है, दूसरों के ऐब चुनना नहीं होता। यहाँ हर वक्त अगर अगर बैठ के यही हमारी गुफ्तगू हो रही है, देखिए आजकल ये हो रहा है, वो फलान ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, हर वक्त हम बुराइयां बुराइयां बुराइयां, सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, इतने ऐब हमें नजर आ रहे हैं हर तरफ। इसका मतलब है कि हमने तो सोच लिया कि हम तो परफेक्ट है, बाकी सारों में बुराइयां। अगर हम अपने ऐप देखने लगे ना, यकीन करें हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरों के ऐप चुनने का। और अगर हाँ, उस वक्त आप कह सकते हैं जब आपने इस्लाह का कोई काम करना है, तो आप कह रहे हैं अच्छा ये ऐप है ना, इसको हम कैसे एड्रेस करें, इसकी हम कैसे इस्लाह करें, फिर तो ठीक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताया कि ये फलां काम लोग करते हैं, तो ऐप ही है ना एक, एक लोग फलां बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको एक पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं बना लिया कि हर वक्त जिधर बैठे जी ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो फिर अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, गंदगी फैलेगी, हम गंदगी को फैलाने वाले बन जाते हैं, समेटने वाले नहीं बन रहे, आम करने वाले बन रहे हैं। जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि आजकल ये हो रहा है। तो आप देखें, हमने पहले भी पढ़ा है कुरान पाक में अंबिया ने अपनी दावत के लिए कैसे शुरू करते थे, या कौमी कह के, ये नहीं कहते थे ओ बदबख्तो, ओ काफरो, ओ मुशरिको, ओ नाफरमानो, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये नहीं करते थे। इस्लाह का काम शुरू ही इससे होता है कि मौजतुल हसना से, अच्छी तरह से नसीहत करना, और आपके अंदर खैर ख्वाही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने इल्म का जोम, अपने इल्म का मुझे इतना जोम हो, अपने इल्म की यानी एक उस मेरे दिमाग में ये है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मैं जरा रोब झाड़ू इनके ऊपर, मैं जरा इनको सीधा करती हूँ, ये सीधे क्यों नहीं होते, इन्होंने नहीं ऐसे क्यों, ये तो सोचे। कदारी का मन्ना अल्लाह वाले का नहीं, कजाली का कौन, तुम इस तरह से कुछ आयत है, मुझे भूल गई, कि तुम भी इसी तरह थे, अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम भी ऐसे थे। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अगर आज उसने हमें कोई राह दिखा दी, हिदायत की, तो ये उसका एहसान है। इस चीज को जहन में रखा करें कि मैं भी ऐसी ही थी, अल्लाह ना मुझ पे एहसान करता तो मैं भी इन्हीं में होती। फिर किसी से नफरत, हकारत, किसी को नीचा देखना, किसी को बेअकल समझना, किसी को ऐसा रवैया किसी के साथ रखना कि ये तो मेरे से कमतर है और मैं बहुत नेक हूं, जब भी जहन में ये आएगा, खैर ख्वाही तो कहीं दूर ही चली जाएगी, बस अपनी किबर और अपना ही नेकी का जोम दिमाग पे छाया होगा, क्या इसलाह होगी खैर ख्वाही। मेरा दिल करता है कि बस सारे अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाए, मैं खुद भी और बाकी भी, तब तो कोई बात समझ आती। और बस अपना ही अगर आपने रोब झाड़ते रहना, तो फिर इस्लाह नहीं हो सकेगी। तो आजकल अव्वल तो दावत और इस्लाह की तरफ और अमर बिलमारूफ नहीं अल मुनकर की तरफ ध्यान ही नहीं रहा लोगों का। लोग कहते हैं जी छोड़ो, जो जो करता करता रहे, हमें क्या, ठीक है। और अगर कोई इस तरफ आ ही जाता है तो फिर क्या, बहस मुबाहसे, लड़ाई झगड़े, मुखालफतें, इल्जाम तराशियां, फिक्रे कसने, दूसरे की तहकीर, तौहीन, ये बस इसको समझते हैं हम दावत का काम कर रहे हैं। उनके मजाक उड़ाने, हंसना, उनके ऊपर लतीफे बनाने। आज देखें लोगों ने दूसरों के ऊपर कितने लतीफे बनाते हैं, दूसरे फिरकों के ऊपर, दूसरे मजाहब के लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कैसी इल्जाम तराशियां, कैसी उनके साथ मुखालफत का रवैया रखते। इससे क्या दावत का काम होगा, इसी खिलाफ सुन्नत काम है। इसीलिए देखे ना, कोई फायदा हासिल नहीं होता। हम अगर जितने मर्जी मुखालफतें कर लें, बहस कर लें, झगड़े कर लें, उनको गालियां दे दें, उनके मजाक उड़ा लें, उससे इस्लाम की क्या खिदमत हो रही। वो नफरत करके भागेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए कहा हिकमत और मौजतुल हसना। और फिर मुजादला कहा, वजादिलहुम बिल्लती या आसन, हत्ता के मुजादला भी करना है ना, अगर आपने बहस भी करनी है तो उसके साथ कंडीशन लगा दी गई कि आसन तरीके के साथ हो। क्योंकि जब बहस शुरू होती है तो हर तरफ से गुस्से में आ जाते लोग, नतने फूल लगते हैं, आस्तीने चढ़ा लेते हैं, उससे की वजह से ये भी नहीं समझ आ रही थी बोल क्या रहे। बाज दफा हाथापाई हो जाती है, बाज दफा ये हालात हो जाते हैं कि पैर पटकते हुए हम वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, कता कलामी कर लेते हैं, भाई भाई में ऐसा हो जाता है। किसी मजलिस में बैठे हुए इतना गुस्सा आ गया, उसके बाद इतनी तलख कलामी हुई कि एक दूसरे की शक्लें देखने से भी गए। ये कौन सा इस्लाम की खिदमत और दावत का काम हो रहा है। एक मिसाल भी लाके ऐसी दिखाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से, एक दिखाएं। बड़े बड़े काफिर आते थे, बड़े बड़े काफिर बड़ी बड़ी बातें ऐसी पूरी करते थे कि कलेजा छलनी हो जाए। इतना तहम्मुल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आज तो अपने मुसलमान ही होते हैं लेकिन फिर भी हम कैसे कर रहे होते हैं, हमारा तरीका कैसा होता है। तो हमने इल्मी रोब नहीं झाड़ना, हमने दूसरे के ऊपर गलबा नहीं पाने का कर रहा कि मैं बस मैं इसलिए कहूँ कि बस मैं गालिब आ जाऊं। नहीं, असल में तो क्या होना चाहिए कि दूसरा भलाई की तरफ आ जाए, ये जहन्नुम से बच जाए। इससे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे रवैये। और फिर इसीलिए फिर अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते ना तो फिर बुग्ज भी आते हैं, देखें फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर एक दूसरे से दिल भी खराब हो जाते हैं, फिर इंसाफ की बात भी नहीं इंसान कर पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को जो हमें असूल बताएगा ना इनको समझें, और फिर इतना दिल पे बातें लेके ना बैठ जाएं, इतने टची हो गए कि उसके बाद हमने अब किसी को कहना ही नहीं क्योंकि फलाने ने मुझे ये कह दिया। हाँ, इमाम मालिक ने फरमाया कि इल्म में झगड़ा और जिदाल नूरे इल्म को इंसान के कल्ब से निकाल देता है। तो जब आप झगड़े में पड़ जाएंगे ना तो फिर आप बात को मौसर तरीके से कह ही नहीं सकेंगे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम ऐसा किरदार रखें, ऐसे तरीका अपनाएं। तो इसमें एक तो बात ये कि एक तो है फॉर्मली दावत का काम करना, फॉर्मली जैसे आप एक दाई के तौर पे जाते हैं और आप लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एज उम्मते मुस्लिमा के फर्द के हर इंसान एक दाई है। चाहे वो मुंह से बोल के दावत नहीं भी दे रहा लेकिन उसका किरदार, उसका अखलाक, उसकी बातचीत, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका लिबास, ये सब दूसरे को मैसेज देते हैं कि मैं एक अल्लाह का फरमाबरदार, एक अल्लाह को मानने वाला हूं। वो हर जगह जिधर जॉब करता है, जिधर रहता है, जिनसे मिलता जुलता है, जिन मजलिसों में बैठता है, जहां पे भी वो होता है, उसका उसके अल्फाज नहीं भी हैं और उसका हर एक्शन जो है ना वो लोगों के लिए दावत का काम कर रहा होता है। ये हमें बात समझनी चाहिए। हम सोचते हैं ना कि ये कोई मौलवियों का काम है, ये कोई इमामों का काम है, ये फलां का काम है। नहीं, ये हर बंदा दावत का काम कर रहा है, कितने इमाम होंगे एक शहर में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान होंगे। लोग इमाम को नहीं जाके देखेंगे कि वो इमाम क्या करता है, लोग हर मुसलमान को देखते हैं कि मेरा कुलीग मुसलमान है, मेरा क्लास फेलो मुसलमान है, मेरा हमसाया मुसलमान है, वो उससे कुछ सीख रहा होगा, वो उससे इस्लाम का कोई मैसेज ले रहा होगा। तो कुल हाजी सबीले उदू इलाल्लाह, ये मेरा रास्ता है, इसकी तरफ दावत हो तो इंसान उदू इलाल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत हो, हर इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, हर मुसलमान अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाता है जब वो इस दीन में एंटर होता है। अगर वो शराब पी रहा है ना, तो वो भी दूसरे को मैसेज दे रहा है कि ये है जो इस्लाम के अंदर सही है, ये मैसेज है उसका। वो क्या मैसेज लेता है कि मुसलमान तो शराब भी पीते हैं, मुसलमान औरतें तो बेपर्द भी पीती हैं, मुसलमान तो झूठ भी बोलते हैं, मुसलमान तो बेईमान भी होते हैं। आप एक मैसेज दूसरे को पहुंचा रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है। वो इस्लाम बाद में पढ़ेगा, पहले वो आपको पढ़ता है, पहले वो हमारी शख्सियत से लेता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, खास उल खास, हर जगह ही वैसे तो होना चाहिए, लेकिन खास उल खास जब आप एक गैर मुस्लिम माशरे में रहते हैं, तो आपकी हर चीज जो है ना, वो दूसरों को मैसेज दे रही है, दावत का काम कर रही है। दावत तो जो देखिए तकरीरें करने से नहीं सिर्फ होती, कि जो लेक्चर हो रहा है दावत का काम हम कर रहे हैं, खुतबे दे रहे हैं, हम दर्स कर लें दावत दे रहे हैं, वो तो दावत है ही है, लेकिन दावत इस तरह से भी है। तो हम इस चीज के ऊपर, बल्कि जब हम दर्स देते हैं या किसी को खास तौर पे बुलाते हैं या कोई तो तकरीर करते हैं, तब तो फिर भी हम संभल के कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बाकी जिंदगी के अंदर जो भी हमारा किरदार, अखलाक, मामलात, सब चीजें हैं ना, ये सब ऐसी हैं जहां पे हम केयरलेस हो जाते हैं, यहाँ पे हमें भूल ही जाता है कि दूसरा बंदा हमसे कुछ ले रहा है। ये हमारी सब चीज या तो दावत इलल्लाह है या फिर लोगों को भगाने वाली है, दावत इला गैरिल्लाह है। लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं किस चीज से, या तो मेरी अच्छाई से, मेरी सच्चाई से, मेरी नमाज से, मेरे रोजे से, मेरे कुरान से, मेरी नर्म गुफ्तगू से, मेरी मेरे मामले से उसके साथ, मेरे एहसान के साथ, मेरे मोहसिन होने से, या फिर वो मुतासिर हो रहे हैं मेरे झूठ से, मेरी शोखियों से, मेरी शो ऑफ से, मेरी अवारा गर्दी से, मेरी दीन की से दूरी से, मेरे धोखे से, इससे मुतासिर हो रहे हैं। किसी से तो हो रहे हैं ना, हर एक इंसान दूसरे को देख रहा है, कहीं तो उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है ना, तो क्या ले रहे हैं वो मेरे से। तो ये पूरी जिंदगी है हमारी जो दावत दे रही है लोगों को, पूरी जिंदगी, या तो अल्लाह की याद की तरफ या अल्लाह के रास्ते से हटाने की तरफ। और ये ना कहे मैं तो दावा का काम करती नहीं, नहीं भी करती, आपका हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है, आप मुसलमान जो हो रहा है खुद ब खुद। लिहाजा बी वेरी केयरफुल, ये ना हो कि कयामत के दिन यही लोग कहें कि या अल्लाह इसको पता था, इसको पता था, और इसने हमारे सामने ये इस्लाम का नमूना रखा था, इसकी वजह से हम इस्लाम से दूर हुए थे, ये धोखेबाज थी, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। इसी तरह मुसलमानों को भी दीन की तरफ दावत देने के लिए आपका किरदार, अखलाक, आपकी जिंदगी एक दावत का काम करती है। आप चाहे कॉन्शियसली नहीं भी कर रहे, अनकॉन्शियसली भी, आप जब कुरान पढ़ने वाले, या आप कोई स्काफ लेने वाली हो गई, या आप कोई नेक नजर आती हैं, या आपकी बातें कुछ ऐसी होती हैं, तो लोग जरूर आपसे कुछ ना कुछ लेते हैं, वो आपको देखते हैं, फिर वो चाहे आप ना कहें, कुछ भी ना उनको कहें, तब भी वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं आपसे, तब भी वो कहते हैं कि ये देखो, ये तो दीन को समझती है, ये कर रही है, तो इसका मतलब सही होगा, ये तो कुरान पढ़ती है, अगर ये इस तरह का इसका ओढ़ना पहनना है तो सही होगा, इसकी ऐसी डीलिंग है तो फिर सही होगी ये डीलिंग। या फिर वो ये कह सकते हैं कि देखो ये ऐसा करती है, ऐसे दीन से तो हम बाज रहे, हमें नहीं इस तरह का दीन पढ़ना, हमें नहीं इस तरह का कुरान पढ़ना, देख लो ये तो खुद ऐसे होते हैं।
ये तो ये खुद ये कर रहे हैं, वहां से कुछ ऐसी भी चीज ले सकते हैं, भाग भी सकते हैं दूर अल्लाह की किताब से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के दीन से, नेकी की बात से। इसलिए ही आजकल देखे ना, बाज कोई कोई होगे चंद एक, लेकिन काली भेड़ें थी इनमें भी, जो कहीं कहीं मस्जिद का इमाम था, कहीं कोई मुदर्रिस था, कहीं कोई हाफिज था, उन्होंने कुछ गलत काम ऐसे किए, उसके बाद लोगों को मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया ये कहने का कि ये तो ऐसे होते हैं, इन्होंने तो करप्शन की, इन्होंने तो फ्रॉड किया, इन्होंने तो फलाने ने उसके साथ ऐसा कर दिया, इसका तो औरतों के साथ कोई ऐसा मामला था, इसका तो ऐसे था, क्या हुआ? एक परसेप्शन खराब हो गया दीन वालों का। बी वेरी केयरफुल। लिहाजा हिकमत भी चाहिए, मौजतुल हसना भी चाहिए, ऐसा जिदाल जिसके अंदर दूसरे की अना को नहीं जगाना, उनके साथ झगड़ों में नहीं पड़ जाना, उनके गिरेबान नहीं पकड़ लेने, उनके साथ कत्ता ताल्लुक नहीं कर देना। कितने लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ता ताल्लुक किया था मस्जिद मक्का की बस्ती में? अबू जहल के साथ भी नहीं किया हुआ था, उससे ज्यादा क्या बड़ा होगा फिरौन, वो तो इस उम्मत का फिरौन था। लेकिन हमारे तो मुंह इधर फिर जाते हैं, इधर फिर, क्योंकि उस वक्त इसने ऐसे कर दिया था, जो आपकी बहस जो हो गई थी, सारी जिंदगी उसको दिल से छोड़ते ही नहीं, कीना दिल में रहता है, हालांकि वो अपने मुसलमान बहन भाई ही होते हैं। इख्तलाफ हो गया, इतनी बात बढ़ गई कि बात ही बस खत्म। इन्ना रब्बक हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही वहु आलम बिल मुहतदीन। एंड में कह दिया गया, अल्लाह को पता है कौन है जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं और कौन है जो भटके हुए हैं। दाई दीन को भी तसल्ली के लिए फरमाया गया, क्योंकि अगर कोई इन असूलों पे चलते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है लेकिन वो लोग नहीं समझते बात को, तो इंसान को सदमा होता है ना, इंसान होता है मैंने तो इतना कोशिश की, खैर ख्वाही भी है, पता नहीं क्यों नहीं असर लेते और फायदा नहीं नजर आता, तो मायूसी ना तारी करो, काम को छोड़ के ना बैठ जाओ, आपका काम सिर्फ दावत देना है, आगे इसको इसके कुछ समर निकलता है, इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, इसमें आपका दखल नहीं, फिर ये अल्लाह का काम है, वो ही जानता है कौन गुमराह रहेगा और कौन हिदायत पाएगा। आप अब फिक्र ना करें, आप बस अपना काम करते चले जाएं, बुलाव का हिम्मत नहीं हारनी। बाज दफा हमारी माशाल्लाह ये बहनें इतना जबरदस्त काम करती हैं, दावा का अल्लाह ताला इनको आफियत दे, सलामती के साथ रखे और इनको भी इन असूलों पे कारबंद करे, तो वो कहती हैं कि दूर से ही लोग देख के हमें इससे मुंह फोड़ फेर लेते हैं कि आ गई या नहीं, अभी हमें आके बताएंगी, तो गम ना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो पता नहीं कितने लोगों ने मुंह फेरे, बल्कि नूह अलैहि सलाम का तो जहां से गुजरते थे लोग अपने कपड़े मुंह कपड़े से मुंह छुपा लेते थे कि कहीं हमें देख ही ना ले, कहीं इधर कोई ना आ जाए, तो इस पे गम ना करें लोगों के रवैयों पे, उनके बातों पे। और ये भी हमें यहां से पता चला कि उदू इला सबील रब्बे का, आप लाते रहें, ये ना सब काफी समझें कि हमने बस खुद कर लिया, हम गुनाहों से बचे हैं तो काफी है, अब औलाद जो मर्जी करे, गौर जो मर्जी करे, हमें उनकी कभी फिक्र ही ना हो, ये हमारा जिम्मा थोड़ी है, नहीं ये भी हमारा हमारी जिम्मेदारी है, मगर इन असूलों के साथ उनको दावत देनी है। इसलिए इमाम शाफी मैंने फरमाया, जो शख्स किसी को उसकी गलती पर मुतनब्बे करता है, तो अगर उसको तन्हाई में करते हो, नरमी के साथ समझाते हो, तो ये नसीहत है, और अगर एलानिया लोगों के सामने उसको रुसवा किया तो ये उसकी फसीहत है, यानी बेइज्जती है। और आजकल दूसरों के ऐबों को सबके सामने बयान किया जाता है, बल्कि अखबारों में इश्तहारों के जरिए सामने लाया जाता है, इसलिए कि हमें ये नहीं परवाह होती कि किसी की सलाह करनी है, हमें तो होता है कि इसको जरा बदनाम करें ना, इसका जरा हम बताते हैं, हम तो इसके कच्चे छटे खोलते हैं जरा। अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए। पता नहीं अल्लाह हमारे किरदार अखलाक से, हमारे मामलात से या अल्लाह कोई दीन से दूर ना जाए, वरना हमारी ही पूछ हो जानी है इसके ऊपर। या अल्लाह हमें हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दावत का काम कर सकें। व इन आकब तुम फ़ाकिबू बिमिथली मा उकिब तुम भी, और अगर तुम बदला लो तो बस बदला उतना ही ले सकते हो जितना कि आपके साथ ज्यादती की गई है। इसका शान नज़ूल पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो तीन आयात हैं इनमें जो भी दाई है उसके लिए अहम हिदायत है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, कितनी आप उनके साथ नरमी करें, खैर ख्वाही करें, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, वो बदजुबानी से ही नहीं बाज आते, वो जुबान दराजियां करने लगे, आपको इससे तकलीफ देते हैं। तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं अब हम ऐसा जवाब देंगे ना, इसको भी जरा मजा चखाते हैं, फिर उसको उससे भी बढ़ के जवाब देते हैं। तो बता दिया गया कि जितनी आपके साथ ज्यादती हुई उतना बदला तो ठीक है लेना जायज है, मगर याद रखना बदला लेने में अगर आप हद से बढ़ गए, जितना जुल्म आपके ऊपर हुआ उससे ज्यादा बदला ले लिया, तो फिर आप जालिम बन जाएंगे। ठीक है, तो बदला कितना ले सकते? उतना उतना, बराबर सराबर। लेकिन अगर सबर करते हैं वाले इन सबर तुम लगो खैर सोबरीन, तो सबर बहुत अच्छा है इंतकाम लेने से बेहतर। अजर है आपको हवा क्या, तो पता होगा एक आदमी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, मेरे गुलाम है इधर उधर चीजें हेर फेर कर देते हैं, फिर मैं इनको साथ सख्ती करता हूँ और ऐसे करता हूँ इनको, तो मेरा मामला क्यामत के दिन क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तराजू में रख दिया जाएगा जो उन्होंने किया तुम्हारे साथ और जो तुमने उनके साथ किया। अगर तुम्हारी उनके साथ जो तुमने उनको सजा दी या जो उनके ऊपर जबर किया वो ज्यादा वजनी हो गया, वो ज्यादा हो गया, तुम्हें उस दिन भुगतना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं अपने गुलाम आजाद करता हूं। ठीक है, तो यानी इंसान देखे कि जितना उसके ऊपर ज्यादती हुई है उससे कहीं मैं बढ़ ना जाऊं। असल में क्या होता है, जब हमारे साथ कोई ज्यादती होती है ना तो हम इतने तैश में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, इसने किया तो किया कैसे, इसने मैं इसको देख, मैंने अब इसको छोड़ना नहीं, मैंने। फिर इंसान जब जज्बात में आता है ना, शैतान उसके साथ खेलता है, फिर उसे वो करा लेता है कि जो जितनी उस पर ज्यादा उससे भी आगे बढ़ जाए। और आयात का शान नजूर जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर मुफसरीन का ये ख्याल है कि ये जो आयत है ना ये मदनी है, गजवा उहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे, और हजरत हमजा को आपको पता है ना कि कैसे शहीद किया गया था, उनका तो मुसला कर दिया गया। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि गजवा उहद में जब मुशरिकीन लौट गए तो सहाबा कराम में से 70 अकाबिर सहाबा थे, उनकी लाशें जब सामने आए तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा था, हजरत हमजा की भी थी, और मुशरिकीन ने उनके साथ बहुत ही गलत किया था, उनकी लाश पे अपना गुस्सा इस तरह निकाला था कि उनकी नाक कान और अज़ा काट लिए थे और उनका पेट भी चीर दिया था उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख इतना सदमा हुआ, माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, आपको इतना सदमा हुआ, आपने फरमाया कि मैं हमजा के बदले में मुशरिकीन के 70 आदमियों का इसी तरह मुसला करूंगा जैसे उन्होंने हमजा का किया। खुद सोचे ना कितनी बड़ी बात थी। जैसे होता है ना लोग सब किसी औरत के ऊपर कोई आदमी गलत करता है, जुल्म करता है उसका शोहर, तो वो कहती है तेरी माँ, तेरी बहने, तेरी फलानी, तेरी भांजी भतीजी, तेरी सारी, पता कि कभी कभी ये भी कह देती तेरी बेटियों को अल्लाह आगे दिखाए ये, उनके आगे आई ये। अब देखो एक जुल्म हुआ, इसने जुल्म किया, तुमने उसके पूरे उसको सारों को लपेट लिया पीछे, फिर कहीं आप किसी की नस्लों तक वो पहुंच जाते हैं, उसको आगे करते हैं, फिर कहीं किसी ने चोरी की, कुछ कोई जुर्म किया, वो पुलिस उनके घर वालों को भी उठा के ले जाएगी, उनको मार मार के उनका भी आधा हाल पूरा कर देगी। कोई कुछ कसूर किसका और आप किससे ले रहे हो, और एक ने किया और आपने सारों को लपेट दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि एक के बदले में 70 का मुसला करूंगा, तो अल्लाह ताला तो इंसाफ फरमाने वाला, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अल्लाह हू अकबर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अखलाक का बेहतरीन नमूना। आप अंदाजा करें कि मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। किसी इंसान को, गैर को भी इंसान देख लेना तो कहता है कि ये क्या हुआ, हमसे देखा नहीं जाता कभी। और टीवी पे कई हालात दिखाते हैं इस तरह की जगहों के, जहां पे लोगों के साथ ऐसे कोई हालात हुए तो दिल दुखी हो जाता है। कहां अपना प्यार है और चचा अपने, और जो महबूब चचा, और उस वक्त साथ देने वाले जब कोई साथ देने वाला नहीं था। तो उस वक्त आपने जब ये फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, बदला लेना तो बस उतना ही लेना जितना आपके साथ ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर सबर करेंगे ना, सबर अच्छा है, तो अफसर ने फरमाया अब हम सबर ही करेंगे, किसी से भी बदला नहीं लेंगे और अपनी कसम का कफारा अदा कर दी। तफसीर मज़री में आता है, इसीलिए तो फतह मक्का के मौके पे ये मुशरिकीन तो थे ना सामने, और मगलूब थे, तो चाहते तो इनको किस तरह से भी करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर चुके थे सबर करने का, माफ कर दिया था इनको। बहुत बड़ा ये मकाम है, तो आला मकाम है। ठीक है, हम अगर इस पे नहीं भी पहुंच सकते तो कम से कम हम इस पे तो रहें कि उतना ही बदला लें जितना कि ज्यादती में। अगर इससे ज्यादा लिया तो एक वक्त होता है कि एक इंसान मजलूम होता है, दूसरा वक्त ये भी हो सकता है कि वो ही मजलूम जालिम बन जाता है जब बदले में लेने में वो हाथ से बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर। इसी तरह आप देखते हैं, ये तो यानी किसी ने मुझे बताया वाकया, उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये उनके पास ऐसे केसेस आते हैं, एक को एक ने कत्ल किया, उसके बदले में उन्होंने उसके चार कत्ल कर दिए। एक ने एक को जख्म लगाया, उसे कहा हाथ या पैर काट दिया, तो उसने उसके बदले में उसको कत्ल ही कर दिया दूसरे को जाके, उनके फैमिली वालों ने। इस तरह की जहालतें हमारे यहाँ बहुत चलती हैं, और हर मामले में, ये कत्ल वारत वाले, मुजरिमों वाले, हर मामले में हम कहते हैं कि इसने पत्थर का जवाब ईंट से, हम कहते हैं इसने मुझे एक कहा मैं तुझे 10 सुनाऊंगी। इवन सुनाने में भी उसने आपको एक सुनाई है, आप उतनी एक उसको अगर कह देंगे ना, तो तब बराबर सवाल मामला हो गया, दुनिया में खत्म हो गया, बस ठीक है, अब ना आपके ऊपर कुछ और ना उसको उससे भी आपने बदला ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा इसने एक सुनाई है, मैं जब तक इसको चार ना सुना दूं ना, मुझे चैन नहीं आना, तो अब आप जालिम है और वो मजलूम है। अल्लाह के हाँ तो तराजू है, देखें उसमें तोला जाएगा। उस तराजू में जिसकी ज्यादती ज्यादा निकली उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन होता यही है, या हम कहते हैं कि माफ करना तो खैर दूर की बात है, हम कहते हैं जो बदला भी लेना हम ज्यादा करके करेंगे, हम इसको मजा चखाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो इंसान इस जज्बात में आ जाता है तो वो उससे ऊपर चला जाता है। और नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा इससे, तो उन्होंने फिर सबर करके भी दिखाया। और ये कहना, मेरा बोलना और आपका सुनना, ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ कुछ ऐसा होता है, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। इंसान अपने आप को कंट्रोल करके उतने पे रखे ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो ज्यादती खुद ना कर बैठे। सबर का मकाम तो खैर वो तो बहुत ही ऊंचा है, वो तो अल्लाह ताला, देखिए आगे आ रहा है ना, वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्ला, सबर कीजिए और आपका सबर अल्लाह ही के साथ है, यानी सबर तो अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह ताला ही किसी को तौफीक दे तो वो सबर कर सकता है, सबर अल्लाह ताला की मदद से ही हो सकता है। आपका सबर, इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, तो अल्लाह ताला सबर दे देता है। देखिए हदीस है ना कि जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसको सबर दे देता है। अगर वाकई इंसान चाहता है ना, पहले तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे मकाम पर जहाँ पे जैसे ये ज्यादती हुई थी, ये ठीक है जंग के अंदर कत्लों वारा तो था, लेकिन मुसला करना, अबू सुफियान ने कहा था ना कि मैंने नहीं इसका हुक्म दिया था, क्योंकि ये भी एक उसमें भी एक गलत चीज समझी जाती थी, पता था उनको कि ये बहुत गलत है, को जंग में जंग हो रही है, ठीक है, कुछ कोई कोई मरेगा कोई जिएगा, लेकिन इस हद तक पहुंच जाना या एक की चार का बदला लेना, ये जब ज्यादती होने लगे और इंसान अपने आप को रोक लेना कि नहीं, मैंने एक का बदला एक ही लेना है, एक का बदला चार नहीं वापस देना, उसने एक किया मैंने एक से लेना, ये भी सबर के साथ ही हो सकता है, और माफ करना इससे ऊपर का दर्जा है, तो ये भी सबर इसके लिए चाहिए। सबर तहमुल नहीं होगा तो फिर मैंने जैसे आपको बताया इंसान आपे से बाहर होगा, कहता नहीं वो मैं जो चोट लगी है मैं उससे डबल इसको चोट दूंगा, समझ आ रही बात, इसने मुझे जो दुख दिया मैं इसे डबल इसको दुख पहुंचाऊंगा, इसने मुझे जो तकलीफ दी है मैं इसे डबल करूंगा, ये होता है। इसके लिए सबर क्या, खुद को रोक लेना, इसके लिए भी इंसान खुद को रोके, वस्बिर, सबर कीजिए, और सबर में इस्तकामत का माना भी आता है, जम जाए। वमा सबरु का इल्ला बिल्ला वला तहसन अलैहिम वला तकुफी दैक मिम्मा यमकुरून, और ना आप गम करें इन पर और ना आपके अंदर घुटन हो, तंगी हो इससे जो वो चाले चले। इंसान को गम तो होता है ना, इतना गम होता है कि इंसान कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता, उसकी सारी एनर्जी, गम ऐसी चीज है, हुज़्न जो होता है ना वो ऐसी चीज है कि इंसान को बिल्कुल बिस्तर पे डाल देता है। तो आप गम ना करें, ये अल्लाह ताला की तसल्ली है, लम तकुफी दैक, और आपके अंदर घुटन ना हो, पता है जब गम होता है ना तो अंदर भी दिल घुटता है, फिक्र ना करें उन चालों से जो जो चल रहा है, जो बुरा करेगा वो अपने लिए खुद गड़ा खोदता है, तो क्या बताया गया, अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह के ऊपर मामला डाल दो, तुम अपना रास्ता चलते जाओ, तुम घुटो नहीं, क्योंकि इंसान नेकी करने के लिए भी पता है ताकत चाहिए होती है, जो इंसान गम में घुलता रहे उसकी तो नेकी करने की भी ताकत नहीं रहती, उसके लिए नमाज भी खड़े होना मुश्किल हो जाता, वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, वो घुलता रहता है, इसीलिए आपने देखा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, लोग ऐसे हो जाते हैं, और दिल की घुटन खत्म ही नहीं होती, तो क्या किया जाए फिर, तो उसके लिए बताया गया कि अल्लाह पे छोड़ दो, आप ना घुटो, आप ना इस गम के अंदर घुलो, ये गम देखे, गम भी इंसान को कहते हैं ना, गम में घुल गया, वाकई इंसान घुल जाता है गम में, वो किसी काबिल नहीं रहता, तो इसलिए बता दिया गया नहीं आप गम ना करें, आप ना अपना सीना तंग करें, क्योंकि एक अल्लाह की जात है, तो पहले सबर की तलकीन, फिर ये बता दिया गया सबर की तौफीक अल्लाह देने वाला है, वरना सबर मुमकिन नहीं है इंसान के लिए, अल्लाह तौफीक देगा तो सबर आएगा, तो उसके मतलब सबर उससे मांगे फिर, और फिर मुशरिकीन जो मुखालफत कर रहे हैं, जो दुश्मनियां कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो तकलीफ आपको पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर गम ना करें, दाई को ये सिखा दिया गया, और जिंदगी के हर मौके के लिए ये नसीहत बड़ी कारगर है, अगर इंसान गम में पड़ा रहे, गुस्से में पड़ा रहे, वो फिर ना तो सही सोच सकता है, ना सही कुछ एक्शन ले सकता है, फिर वो किसके कंट्रोल में चला जाता है, शैतान के। और गम भी ज्यादा हो जाए तो देख लेना फिर क्या इंसान की हालत हो जाती है, आप देख लें, आप एक दिन ज्यादा रो लेते हैं उसके बाद हिम्मत ही नहीं रहती, बस ऐसे बिल्कुल लाचार से होके बैठ जाते हैं, सर दुखने लगता है, वो बहुत इंसान वीक फील करने लगता है, तो और जो गम है वो अंदर अंदर खाता है, वो छा जाता है दिल के ऊपर, फिर दिल तंग होने लगता है और इंसान परेशान होता है, मेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं, मेरे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं, तो अल्लाह पर मामला छोड़ दो, इन अल्लाह मा अल्लज़ीन तक़ू, अल्लाह साथ है ना, वो साथ है, लेकिन किन के, सब के नहीं, उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो कहते हैं कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना मुझसे हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठा लूं जिसमें मेरा रब नाराज होता,
उनके साथ अल्लाह है, तो अल्लाह ताला बता रहा है कि अभी आपके साथ अल्लाह है, और रहती दुनिया तक जो लोग मुत्तकी होंगे उनके साथ अल्लाह है, जो फूंक फूंक के कदम रखने वाले होंगे, जो ये कहेंगे कि अल्लाह ना नाराज हो जाए मुझसे, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए, कोई ऐसी नाफरमानी, कोई ऐसी ज्यादती ना हो जाए कि अल्लाह नाराज हो, और जो ये कहेंगे कि नेकी का काम चाहे कितना ही मुश्किल हो मेरा रब उससे राजी होता है तो मैंने वो छोड़ना नहीं। ये मुत्तकी होते हैं ना, तो जो डर डर के चलने वाले होते हैं अपनी जिंदगी में, बच बच के चलने वाले होते हैं अपनी जिंदगी में गुनाहों से, ज्यादतियों से, गलत कामों से, नाफरमानियों से। ऐसा नहीं कि मुत्तकी से कभी गलती होगी नहीं, होती है, उससे भी होती है, वो भी फिसल सकता है, मगर ये कॉन्शियसनेस होना जरूरी है कि मैंने बचना है, तभी तो बच सकेंगे ना। और जो लापरवाह होते हैं, हमें नहीं परवाह, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, जो ऐसा रवैया रखते हैं वो तो मुत्तकी नहीं होते। ठीक है, तो जो लोग मुत्तकी हैं उनके साथ अल्लाह है, वल्लदीना हुम मोहसिनून, और मोहसिन के साथ भी अल्लाह। मोहसिन कौन है? वो जो एक्सीलेंस पे मामला करता है, हालात कुछ भी हो वो कहता है मैंने अपना मामला बेहतरीन रखना है। एक होता है ना गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट। बेस्ट करने वाला मोहसिन, हक से ज्यादा देने वाला मोहसिन, वो इंसान मोहसिन है जो हुस्न से काम करता है। हुस्न ब्यूटी, उसके काम में ब्यूटी है, जिसको देख के सबको बड़ा अच्छा काम है, बड़ा खूबसूरती से काम किया है। ऐसा इंसान ज्यादती करने वाला इंसान थोड़ी मोहसिन होता। मोहसिन वो है जो ये जैसे एहसान की तारीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो क्या फरमाए, जो ऐसे ही इबादत करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, और वो ये नहीं कर सकता तो ये तो कम अज कम हो कि अल्लाह उसे देख रहा है, यानी वो हर काम को इस तरह से करता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास है तो फिर काम में भी खूबसूरती आ जाती है। और अल्लाह का साथ होना क्या मुराद है? ये नहीं कि फिजिकली नाउज बिला, मतलब है अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद, उसकी बैकिंग है उसके साथ, उसकी सपोर्ट है इस बंदे के साथ। हाँ, इंसानों में भी कई दफा कह देते हैं ना, आप फिक्र ही ना करें जी, हम आपके साथ हैं। वो मतलब नहीं कि वो आपके घर में आपके साथ आके बैठ जाए, आपके साथ है मतलब उसकी सपोर्ट है आपके साथ। जिसको अल्लाह की सपोर्ट मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो जिसके साथ अल्लाह हो जाए फिर वो दूसरे के मकर से क्यों डरे, फिर किसी का मकर कैसे कामयाब हो सकता है। वो क्या अल्लाह तआला ने फरमाया ना, आप घुटन ना करें, आप गम ना करें, तो अब किसी के कहने से गम नहीं दूर होता, लेकिन जब कह दिया इन्नल्लाह माल्लदीन तक़ौ वल्लदीन हुम मोहसिनून, तो इंसान के दिल को करार आ जाता है, क्यों ना गम करूं, क्यों ना मेरा दिल घुटे, इसलिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ, क्योंकि मैं मोहसिन हूं, क्योंकि मैं मुत्तकी हूं। ठीक है, बहुत प्यारी आयात है और बहुत प्यारा मैसेज है। अल्लाह ताला इनके ऊपर अमल करने वाला हमें बनाए, अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर हमें चला दे, इनको याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुश्किल हालात में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला कोई हम पे ज्यादती करे तो हम वो ना बने के जो ज्यादती का बदला उससे ज्यादा लेने वाले हों, और ये ना हो कि हम जालिम बन जाए। अल्लाह ना हमें मजलूम बनाए और ना जालिम बनाना, दोनों ही चीजें मुश्किल हैं। अल्लाह ताला उनकी सफ में हमें ना खड़ा करे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो जाए, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम आयात पर जो शुक्रगुजारी का मैसेज है, और जो तौहीद का मैसेज है, और जो दावत इल्लाह के का मैसेज देना लोगों को, इसके अंदर जो असूल बताए गए हैं उनके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरत को, बड़ी खूबसूरत सूरत है, इस सूरत को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। अल्लाह ताला जो सीखी हुई चीज़ें इनको याद रखना और इन पर अमल करने वाला हमें बना दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت سنیے.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون